नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से 13वें अध्याय का ये श्लोक है। श्लोक क्रमांक है 16। सब लोग मेरे बाद में बोलेंगे। निम्नगानाम यथा गंगा निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा पुराणानाम इदं तथा निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। अर्थात नदियों में जैसी गंगा, देवों में जैसे भगवान अच्युत, वैसे ही वैष्णवों में भगवान शंभु तथा सर्व पुराणों में ये भागवत पुराण श्रेष्ठ है। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवत स्वयं जो स्वयं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ शास्त्र नहीं है, श्रेष्ठतम शास्त्र है। तो उसमें कहा गया है निम्न गानाम, मतलब जो नदी का मतलब क्या होता है, वो नीचे जाती है ना, ऊपर से नीचे आती है हमेशा, वो निम्न गानाम, इसकी गति नीचे होती है हमेशा। तो नीचे जाने वाले जिनको नदी कहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गंगा कहेगी। और देव जितने भी हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है प्रभु जी, ये साउंड कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है। हरे कृष्णा। और देवों में जितने भी देव हैं उसमें अच्युत यानी कृष्ण भगवान श्रेष्ठ माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ। और वैष्णवों में यथा शंभु, वैसे ही वह सब वैष्णवों के अंदर शंभु शंकर भगवान को महादेव को श्रेष्ठ माना गया है। और सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ माना गया, ऐसा इसका शब्दशः अनुवाद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज महाशिवरात्रि है और हम लोग सब वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। जैसे मैं आ रहा था बरसाने में, बरसाने से वृंदावन में, तो बहुत ही उत्सव में वातावरण है वृंदावन में, पूरा ब्रज में आज गांव गांव में भी उत्सव का वातावरण है। और जैसे थोड़ा बहुत शहर आ गया है वृंदावन धाम में, तो उधर भी सब जगह पर ऐसा ही वातावरण है। एवरीवेयर देयर इज अ फेस्टिव एटमॉस्फियर, इज अ ब्यूटी ऑफ वृंदावन। एक आनंद ऐसे एक चीज है ना कि आनंद जब होता है एक साथ में बहुत लोगों को, तो वो कितना भी आप छुपाओगे तो छुपेगा नहीं, वो वैसा महसूस करेंगे उसका आप, कि वातावरण में ही आनंद है। वो वैसे आनंद का अनुभव जैसे हमला एकादशी में होता है ना, गोपाष्टमी के दिन होता है, ऐसे अनुभव आज भी हो रहा है। क्योंकि ब्रजवासी लोग शंभू शंकर पर बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत श्रद्धा है उनको शंकर भोलेनाथ के ऊपर। और कई ब्रजवासियों को मैं जानता हूँ कि वो महीने साल के 360 दिन हर दिन या तो गोपेश्वर या तो बनखंडी या तो जाते ही जाते हैं, उनका दिन उनके दर्शन के बिना पूरा नहीं होता है। लोही बाजार के कई ऐसे दुकानदार हैं जो रोज गोपेश्वर जाते हैं दर्शन करने के लिए, श्रद्धा है उनकी शिव जी के ऊपर बहुत। तो हमारा भी परम भाग्य है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बेस्ट यह है कि इसको भूल जाओ और ऐसे ही सुनो। तो शंकर भगवान एक प्रकार से श्री वृंदावन धाम के अविभाज्य अंग है। आप कहीं भी देखो जगह 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 आपको हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर मिलेंगे। उसका कारण ऐसा है कि पुराण काल में शंकर भगवान और पार्वती जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था और उनको एक व्रत बताया था कि आप ये व्रत करो। उसको ब्रह्म विवर्त पुराण में उसका वर्णन आता है कि वो त्रैमासिक व्रत कहा गया उसको, 90 दिन का व्रत। और वो व्रत जो है वो सौगंधिका फूलों के अर्पण करने से होता है। और सौगंधिका फूल वो है जिसमें कमल के फूल है वो, और कमल के फूल को 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको सौगंधिका कहते हैं। वही फूल ऐसे उड़ते उड़ते आया था वनवास में, और जिसको ढूंढने के लिए भीमसेन गए थे, कहाँ से आ रहा है वो, मानस सरोवर से आ रहा है। मानस सरोवर जब ये व्रत दिया गया शिव जी को और पार्वती को, तो पार्वती ने सभी गणों को लगाया सेवा में, और मानस सरोवर में ये सब सौगंधिका कमल उगाने का काम किया उन्होंने। उसका कई कड़ा नियम था, पहले हफ्ते में रोज इतने फूल, दूसरे हफ्ते में रोज इतने फूल, तीसरे हफ्ते में रोज इतने फूल, बढ़ते हुए नंबर में। और बाकी सब चीज़ें भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो व्रत, लेकिन दोनों ने मिलकर बड़ी लगन से उसको 90 दिन का व्रत पूरा किया। उसके बाद में राधा कृष्ण ने दर्शन दिया उनको, पहले विष्णु ने दिया था, उसके बाद राधा कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया। उसमें अंतर है, बहुत अंतर है उसके अंदर। और राधा कृष्ण और दर्शन देने के बाद दोनों ने मिलकर इन दोनों को ऐसा वरदान दे कि आप ब्रज में रहो, आप ब्रज में निवास करो, ऐसा आशीर्वाद दिया उनको। इसीलिए केवल यहाँ पर परमानेंट रुकने का जो अधिकार है देवताओं में से, वो महादेव जी को पार्वती जी को है। और इसलिए आप ब्रज में देखेंगे ना तो इनके कितने रूप है, नंदी बंदी से लेकर हाँ पूर्णमासी है, हर प्रकार के रूप हैं, अलग अलग प्रकार के लीला में सम्मिलित हैं वो लोग। शंकर भगवान भी चारों तरफ ब्रज में बैठे हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव और कामेश्वर महादेव, फिर नंदेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, कितने प्रकार के, कितनी लीलाएँ हैं। अगर वो जो गोकुल में घाट है ना, कोयलो घाट, उसके बाजू में भी है ये चिंताहरण महादेव, ऐसे सब जगह बैठे हुए हैं। और जितना हम पढ़ते हैं ना, उतना आपको समझ में आएगा कि जितने भी कृष्ण की लीलाएं हैं वो तो सब में ही जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध है। यहाँ तक कि ब्रज लीलाओं में भी है, बहुत ज़्यादा संबंध है। और द्वारका आश्रम और लीला में भी उनका संबंध है। अब भागवत जी पढ़ेंगे ना, दो प्रकार की लीलाएँ आती है, एक शिव जी की ब्रज की लीलाएँ और एक ब्रज की बाहर की लीलाएँ। बलराम जी के भी ऐसे, कृष्ण के भी ऐसे। तो ये बाणासुर का युद्ध हुआ, अभी भी थे भगवान के साथ में। फिर शंकर कृष्ण और कृष्ण का अलग युद्ध हुआ है, उसमें भी बहुत सुंदर लीला है उनकी, जब जगन्नाथपुरी धाम प्रकट हो गया उसके वजह से। तो शिवजी एक प्रकार से भगवान के श्रेष्ठतम भक्त हैं और पार्षद भी उनके हैं, जिनकी लीला में उनका सब जगह पर सहभाग है। इसलिए हम लोगों के लिए ये शिव जी का रूप है ना, जो लोगों को आशीर्वाद देता है कि अच्छा विवाह हो जाए आपका, कन्या का हो जाए, पुत्र का हो जाए, या कला में निपुण हो जाए आप, या सृष्टि को नष्ट करने का काम है ना, डिस्ट्रक्शन जब भी समय होता है तभी। तो ये उनका एक दूसरा व्यक्तिमत्व है, अनऑफिशियल जो व्यक्तिमत्व है ना वो भगवान के भक्त का है। दोबारा बताता हूँ, आपका ध्यान दोबारा बताता हूँ कि ये जो शिवजी महाराज है इनका दो प्रकार का अस्तित्व है। एक अस्तित्व है उनकी ड्यूटी जो करते हैं ना, वो प्रलय करने की, आशीर्वाद देने की, लोग मन्नत मांगते हैं, लोग पूजन करते हैं, क्या क्या करते रहते ना, वो उनको जो भी आते हैं उनको देना जो चाहिए वो ले जाओ, ले जाओ भाई। लेकिन वो उनका निजी स्वरूप नहीं है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको देना है, शिव जी भगवान का आदेश है तो शक्तियां दे चुके हैं तो उनको देना है, दैट्स ऑल। उनका दिल उसमें है कि नहीं ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं ना कि जो लोग भी आके कुछ मांगते हैं ना उनसे, वो चीज मांगते हैं जो समय के साथ नष्ट होने वाली है कि नहीं। अब बोलेंगे अच्छा पति दो, वो काल के समय पे मरने वाला है एक दिन, और उसमें से ज्यादा सुख नहीं मिलेगा आपको। पत्नी भी ऐसा ही है, पति भी ऐसे ही, बच्चे भी ऐसे, अब बच्चे के तड़प रहे हैं, बच्चा हो गया तो फिर उससे भी कष्ट प्राप्त होता है और सुख नष्ट हो जाता है। जो सुख के लिए आप बच्चा चाहते थे वो सुख कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है, इतना शरारत करता है, इतना मस्ती करता है, इतना गलत काम करता है। धन मांगते हैं तो धन भी आने के बाद में समाप्त हो जाता है, या तो दुश्मनी बढ़ती है या तो कुछ होता है। तो जो चीज प्राप्त होने के बाद समय के साथ, समय के प्रभाव के साथ वो नष्ट होने वाली है, ऐसी चीज देने में उनको ज्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन लोग मांगते हैं तो देना पड़ता है, तो उसमें वो रियल आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। हाँ, भगवान की सेवा है, प्रलय के समय प्रलय करना है तो भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जितने लोग लाइन लगाते ना उनके सामने अपनी अपनी लिस्ट लेकर, हर एक की अपनी लिस्ट है ना, शिवजी के भक्त कितने हैं उसके अंदर, बहुत कम होते हैं, मांगने वाले बहुत होते हैं, उनको शिवजी पर प्रेम नहीं होता है। जैसे भस्मासुर गया था ना उनको पूछने के लिए, इतना भयंकर तपस्या किया उसने, और क्या मांगा कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊं उसको भस्म होने दो। जैसे ही तथास्तु हो गया तो क्या बोले, आपको ही हाथ लगाता हूं, मालूम है ना आपको कथा ये। अब इस व्यक्ति को आप शिव भक्त बोल सकते क्या, आप बताओ, कथा पढ़ने वाले को बताओ कि आपको कथा पढ़ने के बाद क्या लगता है कि ये शिव जी का भक्त है? नहीं है, ये तो स्वार्थी आदमी है, उसका सारा काम जो है वो स्वार्थ पर आधारित है, उधर किधर शिव जी का प्रेम भक्ति कुछ है नहीं। बस इस व्यक्ति के पास है, मुझे मिलेगा तो मैं मांग रहा हूं, दैट्स ऑल। आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे छोटे, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आपके पास वो है जो मुझे चाहिए। वो मंदिर में कैसे करते हैं पंडा लोग, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप अच्छा जैकेट पहन के गए तो लगा बहुत पैसा वाला आदमी, तो उनको लगते हैं आपके पीछे। आप देने के बाद में आपको मुड़के देखते नहीं आपकी ओर, कहाँ घर में कौन है आपके, कितने बच्चे हैं आपको, कहाँ रहते हैं आप, कुछ पूछते हैं क्या, बस पैसा लिया चले गए। तो व्यक्ति पर प्रेम नहीं करते हैं, उसके पास जो चीज है उस पर प्रेम करते हैं, तो शिवजी पर प्रेम नहीं करते। वो शिवजी के पास क्या क्या देने की क्षमता है उसके लिए उनके पास जाते हैं, नाइन लाइन लगाते हैं, सोमवार का उपवास करते हैं, जो भी करना है करते हैं, क्योंकि अपने को जो चाहिए ना वो ऐसे करने से मिलेगा, ये फॉर्मूला है उसका, है ना। मेडिकल में एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम देना है, ये फॉर्म भरना है, टाइम पे भर देना है, फिर वो नंबर लगेगा। आपको बोर्ड से प्रेम नहीं है कुछ, तो मेडिकल बोर्ड है वो एडमिशन देने वाला, आपको खुद को एडमिशन लेने में प्रेम है, इसलिए देने वालों को भी जब लेने वाला उस पर प्रेम नहीं करता है तो देने में उतना आनंद नहीं आता है। आपके मरीज भी आपके पास आते हैं, सबकी आप सेवा करते हो, लेकिन कुछ मरीज आपको रिस्पांस देते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना बढ़िया सेवा किया आपने, तो आपको भी फिर वो दिल से आपको सेवा करने में आनंद आता है, क्योंकि सम्बड़ी आपके साथ कुछ संबंध और आदान प्रदान कर रहा है ना उसके लिए, तो आपको उसका समाधान प्राप्त होता है, और ऐसे मरीज की आप सेवा करने में वो आनंद प्राप्त करते हो। तो आप सोचिए, आप अगर समझो लॉर्ड शिवा होते, भगवान शिव होते, तो आपके पास यही लाइन लगी हुई है, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है, उसमें से एक भी आदमी आपसे प्रेम नहीं करता है। लाइन तो लगी हुई है, धन्यवाद सब लोग कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेर चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, कोई बोलते गन्ने का जूस चढ़ा रहे हैं, हाँ, प्रेम करने वाले कितने हैं? सब तो कुछ चाहने वाले, मांगने वाले, ऐसा एकाद ही निकलता है। तो रावण भी उनका भक्त था, लेकिन रावण क्या था सबको मालूम है। इतनी बड़ी तपस्या की थी उन्होंने, इतनी तपस्या की थी, वो कैसे निकला भस्मासुर? उनसे ही वरदान लिया और उनकी बीवी को भोगना चाहता है वो। ऐसे भक्त है सब लोग, मतलब अधिकतर जो असुर लोग है ना वो इनके चाहने वाले हैं। लेकिन शिवजी ऐसे नहीं है, लेकिन शिव भगवान के परम भक्त हैं और उनको असली आनंद जो है ना वो ठाकुर जी की सेवा में आता है, इसलिए वो महान है। महान ये नहीं कि वो अधिकार बहुत है उनके पास में, प्रलय का, इसका, उसका, बहुत भयंकर, तीसरी आग भी देख रखी है, कभी खोल के जला सकते हैं, इसलिए उनका महानता नहीं है। इनकी महानता यह कि वो इतना महादेव होने के बावजूद भी भगवान का खिलौना बंदा भी पसंद करते हैं। अभी आपके बंदा हमने योगी जी आए, उनको अपना खिलौना बना सकते हैं क्या बच्चों के लिए? आओ योगी जी नाचो, हमारे बच्चे बहुत रिझ रहे हैं आपसे, थोड़ा नाच करके दिखा दो, तो वो क्या करेंगे? लेकिन शिव जी जिनके द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा उनका निर्माण होता है और ब्रह्मा जी भी उनके पूजन करते हैं उनका महादेव के रूप में, तो वो भी जानते हैं ये महादेव है ही, निमित्त से मेरे से जन्म ले रहे हैं, जन्म जो है मेरे से निमित्त मात्र में ले रहे हैं, लेकिन है तो महादेव, मेरे लिए भी पूजनीय वंदनीय है, और ब्रह्मा जी भी उनका पूजन करते हैं। ऐसे एक ही महादेव है, दस महादेव नहीं है, कितनी बड़ी पोजिशन है उनकी। लेकिन आप नंदगांव की कथा सुनो, भेष बदल कर देखने गए उनको पहले, तो मैं यहाँ दरवाजा बंद कर दिया मुंह पे, फिर बोले कि क्या समझते अपने आपको मैया, मैं कैलाश से आया और मुझ पर मुंह बंद, दरवाजा बंद कर दिया, कि ये क्या तरीका है? नहीं, कुछ भी नहीं बोले और जाके रोते बैठे वहां पर, रोते हुए बैठे। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो मंत्र तंत्र टोना करके सब अपना चाहिए वैसा पूरा कर सकते हो, लेकिन वैसा नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो भक्त है भगवान के, महादेव के रूप में वहां पर नहीं आए हैं भगवान को महादेव का रूप दिखाने के लिए, वो तो अपनी प्रेम भक्ति प्रकट करने के लिए आए हैं वो, इसलिए वो उद्दंडता नहीं दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, बोलो महादेव जी रो रहे हैं। तो भगवान ने भी रोना शुरू कर दिया, दर्शन मिला, तो यशोदा क्या बोलती है, अरे बाबा तुम बढ़िया बाबा बहुत हो, तुम्हारा हाथ लगते ही बाबा हमारा बालक रोना बंद कर दिया, अब ऐसा करो तुम यहीं रहो, यहीं रहो और जब जब बाला लाला रोएगा तब तुम आ जाना। मतलब क्या हुआ उसका, बन गया ना खिलौना, हम खिलौना कब निकालते हैं, जब बच्चा रोता तो खिलौना निकालते हैं। तो वो महादेव होने पर भी भगवान के लिए उनका खिलौना बनना पसंद करते हैं, तैयार है उसके लिए वो, ये उनकी मानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब रास भगवान रचा रहे थे तभी ये भाग के आए, एकदम दौड़ते हुए आए और सीधे रासमंडल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो सखिया उनको रोकती है, कहाँ जा रहे हो? रासमंडल जा रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर एंट्री नहीं है, खाली एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं यहाँ पर, राम को जाना है, जाना है, ठीक है, क्या करना होगा बताओ, तो जाना है, जाना तो है ही, कैसे जाना बताओ, स्त्री बनना पड़ेगा। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो इम्पॉसिबल है, मतलब आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, स्त्री बनना, ऐसा बोल दिया उनको, आपको स्त्री बनना पड़ेगा, ये बोल रहे कैसे बनना है बताओ। कभी कभी क्या बोलते ना कि अरे 11 बजे ऑफिस बंद हो गया, अभी कभी है मैं 6 बजे आ जाऊँ, 6 बजे 5-6 घंटे क्या करेंगे आप, तो बोल ही दिया ऐसा, मतलब आप जाओ अभी, आओ मत इधर वापस, लेकिन 6 बजे खोलेगा तो वापस मिलेगा दरवाजे पे बैठा हुआ है, मतलब कुछ विशेष चीज है ना कि उसको मिलना ही है, 6 घंटे से बैठा हुआ है। वैसे ऐसे बोल दिया उनको कि आपको कन्या बनना पड़ेगा, तो ये उम्मीद है कि चले जाएंगे अभी ऐसा बोलने के बाद में, लेकिन ये पूछ रहे कैसे बनना है बताओ। इतने आतुर है वो सेवा करने के लिए। फिर वो कहते जाओ मान सरोवर में जाके स्नान करोगे ना, जहां पर राजा रानी ने अश्रु बहाए थे मान करते हुए, वहां स्नान करोगे तो तुम गोपी शरीर प्राप्त करोगे, फिर तुम योग्य हो जाओगे। तो यही दौड़ लगा के गए उधर, उसी उसी तेजी में स्नान किया तो तुरंत सुंदर गोपी का शरीर प्राप्त हो गया हमको। वो सीधे भाग के वहां से वापस आ गए रास मंडल के प्रवेश द्वार पर। अभी गोपियां मुंह पे हाथ रखे हंस रही है उनको, मतलब वो भगवान के भक्तों के लिए एक मजाकिया वस्तु बनना भी चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। अभी योगी जी आ गए मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर, कुछ लोग हंस सकते हैं उनको देखकर, अरे देखो ऐसा गंजा आ गया, देखो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गंजा बन के आ गया, देखो ऐसा बोल सकते हैं को उसका, ऐसे हिम्मत है किसकी बोलने की। लेकिन महादेव को देखकर सखियां हंस रही है मुंह पे हंस रखे, बोला क्या हो गया, मुझे सुंदर गोपी तो आ गए लेकिन नाग वाग वैसे रह गए ना उसके ऊपर, वो थोड़े चले गए, वो भाव तो इनका था गोपी बनने का तो वो गोपी बन गए, लेकिन सांप का नहीं भाव था तो मानसरोवर में डूबो या तो समुद्र में डूबो, वैसे कैसे रहेंगे, तो वैसे कैसे रहेंगे गले पे हाथ में सर पे। और इसको पता नहीं है क्योंकि इनका तो होश ही नहीं, इनका भाव तो ऐसा है कि रास मंडल पे जाना है बस, अभी नाग है नहीं है क्या है कुछ कुछ भी ध्यान नहीं उनको, इतने मग्न है वो। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, मतलब होशो आवाज ही नहीं आज बाजू में क्या हो रहा है, इतने उत्सुकता है उनको। तो गोपियां उनको मतलब उनका मजाक नहीं उड़ा रही है, एक तरह से कौतुक कर रही है उनका कि देखो कितने महादेव होते हुए कितने भगवान के लिए लालायित हैं, होश ही नहीं उनको कि नाग वाग है कुछ है। तो सराहते हुए मतलब उनको अप्रिशिएट करते हुए ललिता विशाखा ने उनका श्रृंगार किया, बहुत सुंदर। तो स्त्री तो बनी चुके थे सुंदर बहुत, तो बहुत सुंदर सुंदर गोपी बन गए वो, इसको हम गोपेश्वर महादेव कहते हैं। तो अंदर ले गए हाथ पकड़ के रास मंडल के अंदर, बीच रास मंडल में भगवान बैठे हैं रत्न सिंहासन पर, वहां पर चामर दिया उनके हाथ में, सेवा करवाई उनसे चामर सेवा, बहुत देर तक सेवा किया रास के आरंभ में, और फिर वापस हाथ पकड़ के बाहर ले आए गोपी का, कहते आप यहीं खड़े रहो दरवाजे पे और मंडल की रक्षा करो, आप भी आज भी बैठे हैं वहां पर। तो कहने का तात्पर्य क्या, एक जगह खिलौना बनने को तैयार है, एक जगह मजाक का विषय बनने के लिए भी तैयार, सखियां हंस रही तो भी ठीक है, मतलब अहम नाम की चीज ही नहीं है उनके अंदर, इतने बड़े महादेव होते उनके लिए पूजनीय है वो शिव जी की, समझ समझना। गोपियां भी शिव जी को पूजन करते हैं, पार्वती जी का करते हैं, शिव जी का करते हैं, सब करते हैं, उनके पूजनीय देव सामने आ गए तो भी हंस रहे हैं उनको, लेकिन उनको ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बार उनका भाव देखिए आप, उन्होंने भगवान से कहा, भगवान वो हमने आपका मोहिनी रूप के बारे में बहुत सुना है, एक बार हमको दर्शन कराइए मोहिनी रूप का। तो भगवान कहते हैं, अरे भैया तुम मोहिनी रूप के पीछे मत पड़ो, तुम पागल हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, वो सब चलेगा, लेकिन आप दिखाओ, हमको बहुत उत्सुकता है देखने के लिए। तो भगवान तुरंत मोहिनी बन गए। तो ये जो उनके पीछे लगे ना, ऐसा ऐसा पीछे लगे, ऐसे पीछे लगे, भाग रहे उनके पीछे, और वो मोहिनी भी इतनी चतुर थी, भगवान ने क्या किया मोहिनी रूप में, जब भाग रहे ना, एक एक वस्त्र को उतार के फेंकना शुरू कर दिया। तो लगे ऐसे कि अरे ये जो अर्धनग्न औरत भाग रही है उसके पीछे शिव जी भाग रहे हैं जानबूझ के। अच्छा वो अभी तो अकेला सीन है ना, अकेली औरत भाग रही है वस्त्र को उतारती उतारती, और अकेला आदमी भाग रहा है पीछे, कोई देखने वाला नहीं, ठीक है तो भी ठीक ही है। लेकिन मोहिनी मूर्ति एक समय पर जहां पर शिवजी के सन्यासी ऋषि भक्त हैं बैठे भजन कर रहे हैं, शिवजी की प्रेरणा लेकर विरक्त होकर भजन कर रहे हैं, वहां से भागती है बीच में से उनके, जैसे जो ये सभा चल रही है उसे पीछे से भाग जाती, बीच में से भाग जाती है। तो आप तो देखेंगे ना बैठे हुए लोग तो देखते, अरे ऐसे करते हो कैसी औरत है, हाँ यहाँ तो ठीक था, औरत तो अपनी नहीं, कोई पराई औरत है तो कोई चिंता नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। उतने में एक आवाज आती भागने की, तो देखते तो अरे हमारे शिवजी हमारे इष्ट भाग रहे उसके पीछे। तो अभी तो पहले तो भागने वाली औरत पराई थी, अभी जो भाग रहे वो हमारे हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है, उनके बीच में से भाग रहे हैं। अगर हम और आप होते ना तो देखते थे अरे यहाँ से भाग रहे तो शिष्य बैठे हुए हैं, चलो वहां से भाग जाते दूसरी तरफ से, इनके बीच में से क्यों भागेंगे, क्योंकि ये क्या कहेंगे, इनकी हम पूजा करते हैं, इनका प्रवचन सुनते हैं, इनका उपदेश सुनते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनके वजह से हम विरक्त बने हुए हैं, और अभी ये देखो क्या कर रहे हैं, तो आपका पोजिशन खत्म हो गया ना। देखो सबसे प्रसिद्ध आदमी को पता है चिंता किसकी होती है, कि प्रसिद्धि कम ना हो, सम्मान जिसको बहुत मिलता है उस उसको सम्मान कम होना एक बहुत दर्दनाक चीज है। आपको 10 लोग सलाम करते हैं, अभी 3 ही सलाम करते हैं, कितना कष्ट होता है। आप गुजर रहे हो, सब सलाम कर रहे हैं, एक सलाम नहीं कर रहा है, फिर आप जो रहे सबने किया, उसने क्यों नहीं किया, और कल उठ के एक ने नहीं किया था, पल 15 लोग नहीं कर रहे हैं, 20 ही कर रहे हैं, तो तकलीफ होती है ना अंदर से। ये तो आध्यात्मिक गुरु है, उनके शिष्यगण है उनके, वो गुरु को शिष्यों के सामने अपना आदरणीय स्थान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, शिष्यों के कल्याण के लिए जरूरी होता है, वो मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं अपने शिष्यों के सामने, लेकिन एक तरह से वो मिसबिहेव ही कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं विरक्त बनो, और खुद जो कपड़ा उतार के भाग रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कितना आपका विश्वास भंग हो जाएगा। जिसकी प्रेरणा लेकर हमने विरक्ति स्वीकार किया, वो देखो क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको परवाह नहीं उनकी कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनके बीच में से भागते उनके पीछे। तो ये शिव जी का भाव है ना, बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा भाव है, भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो तो भगवान के पीछे भाग रहे हैं, उनको स्त्री के शरीर में आकर्षण नहीं है। वो ना इतने विरक्त हैं कि पार्वती को गोद में बिठाकर अपने ऋषि मुनियों को शिष्यों को प्रवचन देते हो, और विषय क्या है, विरक्ति। और शिष्यों को कोई परेशानी नहीं है, और पार्वती का सौंदर्य क्या है जानते हो आप, वो खाली आशीर्वाद देने के लिए आए थे भस्मासुर को, तो पार्वती को बाय द वे लेके आए थे साथ में। इतनी सुंदर पार्वती देवी है, इतनी सुंदर है कि वो हैरान हो गया देख के उनको, वो वर मांग रहा है और देख रहा है पार्वती जी को, इनसे बातचीत कर रहा है लेकिन देख रहा है पार्वती जी को। अफकोर्स वो राक्षस था, लेकिन पार्वती जी बहुत सुंदर है, अन्नपूर्णा देवी बहुत बहुत सुंदर है। तो इतनी सुंदर पत्नी जिनकी है, वो जब अविवाहित थी ना, कन्या थी ना, तो इनके लिंग की पूजा की है उसने, और ये टस से मस नहीं हुए। बोलो, इतनी सुंदर युवा अवस्था में जो कन्या है, दक्ष राजा की कन्या है, उन्होंने इसके लिंग की पूजा किया, सब अभिषेक आरती पूजन सब किया, और ये एकदम स्थिर है, उनकी बुद्धि कहीं विचलित नहीं हुए, इतना व्यक्तित्व है इनका, उच्च कोटि का व्यक्तित्व है, इतना उच्च कोटि का व्यक्तित्व है कि भगवान भी उनका पूजन करते हैं, प्रभु रामचंद्र ने भी उनका पूजन किया हुआ है। तो कुछ लोग उसको अलग समझते हैं, देखो प्रभु ने भी उनका पूजन किया है, इसलिए प्रभु से भी ये श्रेष्ठ है और ये परम भगवान यही है, लेकिन शिव जी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, भगवान कौन है और कौन नहीं है, कन्फ्यूजन उनके भक्तों के और फॉलोअर्स के अंदर है, भगवान के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना शिव जी के अंदर है। तो हर जगह पर ये शिव जी का जो असाधारण व्यक्तिमत्व है ना, अनकॉमन पर्सनैलिटी, हटके बोलते ना उसको हमारे भाषा में, हटके, अलग, आमतौर पे ऐसे व्यक्तिमत्व किसी का नहीं होता है। और आश्चर्य की बात यही है कि ये एक ही व्यक्तिमत्व ऐसे हैं, वन पर्सन वन तत्व, क्योंकि जीव तत्व एक तत्व है, लेकिन जीव कितने हैं, अनंत जीव हैं, मनुष्य अनंत जीव है, कीटक अनंत है, प्राणी अनंत है, पक्षी अनंत है, जल में रहने वाले अनंत है, दोनों जगह रहने वाले अनंत है, सस्तन प्राणी अनंत है, जीव तत्व एक है, लेकिन सीधे बैठो आप, जीव तत्व एक है लेकिन जीव अनंत है, उसके बाद में विष्णु तत्व है, वो तत्व एक है लेकिन अनंत विष्णु है, अनंत वैकुंठ है, हर एक वैकुंठ में एक विष्णु बैठे हैं, जिससे सबसे अलग है वो, तो विष्णु तत्व भी अनंत है, विष्णु भी अनंत है तत्व एक होने के बावजूद, लेकिन शिव तत्व एक है और व्यक्ति भी केवल एक है, एक ही शिव जी, ऐसे अनोखा उनका पोजिशन है। 55 गुण भगवान के जितने 64 गुण है ना, उसके अंदर के 55 गुण शिव जी के अंदर होते हैं, भगवान के 50 गुण परिपूर्ण मात्रा में ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं, और हमारे अंदर सब भी अंदर 50 गुण होते हैं भगवान के, लेकिन अणु मात्र अंश में होते हैं, कभी कभी दिखते भी नहीं, लुप्त तो हो चुके हैं ऐसे, वो गुण पूर्ण मात्रा में ब्रह्मा जी के अंदर है, 50-50, जीव तत्व जीव तत्व, ब्रह्मा भी जीव तत्व है, परिपूर्ण जीव तत्व है, हम अपरिपूर्ण है, लेकिन गुण 50 है। उससे आगे 55 गुण वाले शिव जी हैं, 60 गुण वाले विष्णु तत्व हैं। जितने विष्णु है ना, राम कहिए, नरसिंह भगवान कहिए, वामन देव कहिए, और हंस, जितने भी अवतार हुए भगवान के, हंस अवतार हुए हैं और हयग्रीव अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए सब विष्णु तत्व हैं, 60 गुण वाले। और आगे के 4 गुण केवल कृष्ण में हैं, और ये विष्णु उनके बीच में आते हैं। और भागवत में जब तो वर्णन आता है, इसका मतलब वो प्रमाण हो गया। भागवत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रमाण नहीं है, वो भागवत में नहीं है, ऐसा नहीं। भागवत में 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में 16वां श्लोक हमने गाया, निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, वैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी महाराज है। और भक्तों के संग पर कितना प्रेम करते हैं, भक्तों के संग पर कितना प्रेम करते हैं पता है आपको? भगवान के गिरिराज की लीला में, भगवान के लीला में चक्र ने सेवा किया था भगवान का, तो उन्होंने सेवा पूर्ण होने के बाद में वही विनती किया कि हमको ये आश्रय दो, हमने यहाँ पर आपका सेवा किया है। तो चक्र को कहाँ प्रवेश है ब्रज में बताओ? भगवान चक्र लेके आए थे क्या इधर ब्रज में? कोई शस्त्र अस्त्र कोई धारण नहीं किया उन्होंने, तो चक्र को बुलाया उन्होंने बाहर से ब्रज की लीला में भाग लेने के लिए। तो ब्रज की लीला में भाग लेने का पहला और लास्ट मौका था शिव जी का, अपना चक्र का। तो चक्र ने कहा कि इसकी याद में मुझे यही रहने दीजिए। तो उधर गोवर्धन के बीच में उनको भगवान ने निवास स्थान दिया, चक्र तीर्थ। तो वहां पर शिवजी विराजमान हो गए। क्या नाम पड़ा उनका? चक्रेश्वर महादेव। लोग क्या बोलते हैं? चक्रेश्वर महादेव, लेकिन है वो चक्रेश्वर महादेव। जहाँ चक्र तीर्थ है वहीं विराजमान है, और गिरिराज के विभाग के रक्षण करता है। मथुरा विभाग के भूतेश्वर महादेव हैं, उधर काम्यवन में कामेश्वर महादेव हैं, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव है, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। तो सनातन गोस्वामी वहां पर भजन करने गए थे, कुटी है उनके आज भी उधर। तो वहां पर महाराज जी ने बहुत तप किया, भजन किया, गिरिराज का परिक्रमा दिया। एक दिन परेशान हो गए क्योंकि इतने मच्छर हो गए उधर, इतने मच्छर हो गए कि इनको रहना भी मुश्किल हो गया। अच्छा तपस्वी जीव है, बहुत उनको कष्ट होता नहीं, लेकिन सेवा नहीं हो रही थी उनकी, जो सेवा लिखने की थी उनकी वो नहीं हो पा रही थी। तो कई दिन आतंक सहन किया मच्छर का, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अभी ये जाना चाहिए, यहाँ पर अभी सेवा ही नहीं हो रही तो क्या फायदा उसका। तो शिवजी महाराज को ये सहन नहीं हुआ, शिवजी महाराज ब्राह्मण बालक बन के बाबा के पीछे भाग रहे हैं। सनातन जी महाराज क्यों जा रहे हैं आप यहाँ से? तो क्या करूँ बेटा, यहाँ पर इतने मच्छर हो गए तो मैं कुछ सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहीं जगह जाऊँ सेवा करने, सेवा तो जरूरी है करना, इसलिए जाने लगे वो। तो बालक कहता है बाबा एक काम करना, आप ना एक दिन और रुकना यहाँ पर, देखो कुछ प्रयास करते हैं एक दिन में कुछ करने का। तो बालक के कहने पर वो मान जाते हैं और एक दिन रात को वही रहते हैं, बहुत मच्छर रहते हैं। तो शिवजी महाराज महादेव है ना, महादेव को सब पता है कि देवता लोग क्या क्या कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी, किसकी किसकी, कौन किसके इंचार्ज, सब जानते हो। तो कीटकों के इंचार्ज देवता कौन थे, उसके पास गए और बताया कि हमारे एरिया में बहुत मच्छर हो गए, आप हमारे एरिया से मच्छर को हटा दो। अभी वो महादेव है, वो भले ब्रज में बैठे हुए हैं तो क्या हुआ, अधिकार तो है ना, अधिकार को इस्तेमाल किया उन्होंने, उस देवता को आदेश दे दिया सब कीटक यहां से हटने चाहिए। आज भी वहां पर कीटक नहीं, बोलो, चक्रेश्वर महादेव के पास में। तो नेक्स्ट डे सब कीटक गायब हो गए, तो सनातन जी महाराज ने वहां से शिफ्ट होना कैंसिल कर दिया, नहीं रहने लगे। एक वैष्णव का संग जो है वो उनको मिल रहा है, उनके सामने बैठकर भजन कर रहा है कृष्ण के नाम का, तो सामने कृष्ण की सेवा कर रहा है, आचार्य है, ब्रजवासियों को बड़ा प्रिय है, और शिव जी को भी प्रिय है। तो उनको यहाँ से न जाने देने के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, और अभी भी शिव जी वहीं रहते हैं, और सनातन जी ने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वहीं अपना समय बिताया और वहीं शरीर त्याग दिया व्यास पूर्णिमा के दिन। तो वैष्णव भक्ति, इनकी वैष्णव पर प्रेम जो है ना, इसलिए शिव जी पता है आप मांगेंगे उनसे ना तो देंगे आपको, लेकिन आप पर प्रेम तब करेंगे जब आप उनके इष्ट की सेवा करोगे। जब उनकी इष्ट की सेवा करोगे तो आप पर वो प्रेम करेंगे, नहीं तो आपको देते रहेंगे, आप मांगते रहो देते रहेंगे, है ना। ये लो भाई जाओ, वापस मत आओ, जाओ फिर आएगा तो ये लो। लेकिन आपसे प्रेम करने का कोई कारण नहीं उसके ऊपर ना, आप लेने आए हो हम दे रहे हैं, जाओ निकल के, आत्म संबंध कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। उनके साथ में आत्म संबंध करते हैं जो उनके इष्ट का भक्त होता है। जहां तक हमारी पढ़ाई है, हमरे पूरे पढ़ाई में एक ही ऐसा शिव जी का भक्त मिला जिन्होंने शिव जी की भक्ति उपासना किसी भी चीज के लिए नहीं की कि मुझे ये चाहिए इसलिए तपस्या किया, ऐसा कभी नहीं किया। वो थे आत्मदेव ब्राह्मण, यहीं के थे आपके, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2 किलोमीटर के अंतर पर आत्मदेव ब्राह्मण। शिव जी की निरपेक्ष सेवा किया उन्होंने, कुछ भी ना चाहते हुए, कोई मन में ऐसा मोटिवेशन नहीं है, तो शिव जी प्रसन्न हो गए उनके, क्योंकि ऐसा कोई शिव जी का भक्त है ही नहीं जो बिना किसी चाहत से उनसे भजन कर रहा हो। कुछ ना कुछ मन में चाहते ना, वो ऐसा होना है, वैसा होना है, अमर होना है, हिरण्यकशिपु है, रावण है, कितने मांगे उनकी बड़ी बड़ी, बाप रे सब सिद्धि चाहिए उनको, सब शस्त्र चाहिए, सब कला विद्या चाहिए, अच्छी पत्नी भी चाहिए, अधिकार चाहिए, नियंत्रण चाहिए, सब उनका होना चाहिए, अमर भी होना है, सब कुछ, इतना बड़ा लिस्ट है उनका, बाप रे। तो एक ऐसा निकला तो शिवजी प्रसन्न हो गए, स्वप्न दर्शन दिया उनको, कहते आत्मदेव मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, क्या क्या दूं आपको बताओ, वरदान देना चाहता हूं। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, आंखों में आंसू आए उनके, अरे ठाकुर जी ने दर्शन दिया मुझे शिव जी महाराज ने। तो कहते महाराज मैंने आपसे कभी कुछ सोचकर कुछ भजन नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके आपने दर्शन दिया यही आपकी बड़े बढ़ाई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा भजन स्वीकार कीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। तो वो और खुश हो गए कि भाई मैं दे रहा हूँ फिर भी वो, अरे जब मैं कह रहा हूँ मांगो तो लोग तो लिस्ट बना लेते पूरी, ये तो फिर भी बोल रहा है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो और प्रसन्न हो गए वो, बोले नहीं अभी तो आपको लेना ही है, हमारा दर्शन खाली जाता ही नहीं है, आपको देना ही है, आपको देना चाहते हैं, देना ही है, आपको मांगना ही चाहिए। तो फिर आत्मदेव भी इतना बड़ा भक्त था उनका, वो सोचते हैं कि लग रहा है कि मैं अगर मांगूंगा तो इनको अच्छा लगेगा, मतलब इनकी इनकी संतुष्टि हो जाएगी, तो उनको संतुष्टि, अपने इष्ट को संतुष्टि मिले इसलिए उन्हें सोचा कुछ मांगना चाहिए, चलो मैं मांगूंगा तो अच्छा लगेगा। जैसे आप अभी किसके प्रेम से गए और आपके डाइट के बहुत सारे परहेज हैं और वो आपको बड़े प्रेम से आग्रह कर रहा है, सर प्रभु जी ले लो, सर ले लो, महाराज ले लो, तो उसके प्रेम के लिए आप फिर वो अपना नियम तोड़ के आप कुछ खाएंगे जस्ट प्रेम को प्रतिसाद देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना, करते ना हम लोग, मैं भी करता हूँ। तो वैसे हमारे इष्ट को मेरे मांगने से अगर खुशी मिल रही है तो मांगता हूँ, चलो आपके लिए मांगता हूँ। तो क्या बोला उन्होंने कि आपको जो प्रिय है ना वो हमको दे दो। तो शिव जी नृत्य करने लगे वहां पर आनंद से, तो आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे जो प्रिय है वो मांग रहा है, और आज आपने मांगा है तो मैं दूंगा जरूर आपको। आप उठो सुबह, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, कुएं में उतरो और राइट साइड में प्रवेश करो कुएं के अंदर, आपको उसके एंड में, वो टनल के एंड में, क्या कहते हैं उसका, वो सुरंग, सुरंग सुरंग के एंड में आपको मेरी सबसे प्रिय वस्तु मिलेगी। तो तभी उठ गए वो एक्साइटमेंट में, तभी जग गए वो, और क्या मिला उनको कुएं के अंदर, राधा वल्लभ जी का विग्रह मिला। इसका मतलब क्या होता है, राधा वल्लभ जी शिव जी के जीवन प्राण है, जीवन धन प्राण है, वो इष्ट है उनके, प्रिय है। और शिव जी ने आदेश दिया कि अभी इनकी पूजा करो आप। तब से फिर आत्मदेव ने शिव जी की जगह पे राधा वल्लभ जी का पूजन शुरू किया। इसमें शिव जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, अरे आज तक मेरा पूजा किया अभी छोड़ दिया और अभी किसी और की पूजा करता है, नहीं, बड़ी खुशी है उनको इस बात पर। अगर आप उनके भगवान की भजन करते हैं तो उनके भजन करने से अधिक आपसे ज्यादा प्रिय हो जाएंगे आप उनको। आप उनका भजन कर रहे हैं तो एक तरफ से उनकी प्रियता हो रही है, और उनके इष्ट का भजन करेंगे तो जितना प्रिय पहले थे उससे अधिक प्रिय हो जाएंगे, ये उनकी मानता। हमारा ऐसा होता है क्या, आज मुझे आप सलाम कर रहे हो, अगर मुझे बंद करके किसी और को करने लगेंगे कितना कष्ट होगा मुझे, लेकिन उनका ऐसा नहीं है, इसी को भक्त कहते हैं। परम भक्त है भगवान के, ऐसे अनंत लीला है उनकी। तात्पर्य केवल इतना ही है, उनसे कोई भौतिक वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए, उनसे केवल भगवान का भजन मांगना चाहिए, और वो भगवान का भजन देते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे उनको वो पत्नी अच्छा, पति अच्छा, धन देने की शक्ति है ना, वैसे भगवान की भक्ति देने की शक्ति भी उनके अंदर है, मांगने वाला कोई नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप मांगो उनसे, ये सब बेकार की चीजों को मांगते बिना अगर वो भक्ति मांगेंगे तो आपको देंगे, और आपसे पहले से अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे हमेशा, जैसे मैं शिव जी की याद करता हूँ, मुझे मेरी कहानी याद आती है, वो ये है कि मैं भी भले शिव जी का भक्त था, लेकिन वैसा ही था जैसे आम भक्त होते ना, अपना लिस्ट लेके। तो मैं MBBS में प्रवेश किया, तो पढ़ाई नहीं किया कुछ समय के लिए, परीक्षा आ गई, पढ़ाई कुछ नहीं हुई थी, तो टेंशन तो आता है ना, अभी चले जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर शिव जी के पास जाना शुरू कर दिया, हर रोज सोमवार को अभिषेक करना शुरू किया, भाई महाराज MBBS में पहली परीक्षा है, पहली वाली अच्छी तरह से पास होने दो, घर में अभी SSC में नंबर आया, 12th में भी नंबर आया, अभी MBBS में फेल हो गए तो कैसे चलेगा। तो एकदम गिड़गिड़ा के एकदम डेस्परेट होकर अभिषेक सोमवार को शुरू कर दिया, हर सोमवार को अभिषेक किया, वही अपना एप्लीकेशन वही डाल रहे हैं उनके सामने, हो गया एग्जाम और फर्स्ट क्लास में पास भी हो गए भगवान की दया से। तो उसके बाद में अगले सोमवार आया, तो अगले सोमवार जब गए तो भी अभिषेक किया हमने, लेकिन अभी क्या मांगे, अभी तो जो हॉट इच्छा थी वो पूरी होगी ना, हॉट लिस्ट में जो था वो नंबर वन का हो गया काम, तो बहुत ऋणी भाव था मन में, था कृतज्ञ भाव था कि शिव जी ने हम पर कृपा किया, बचाया हमको फेल होने से, तो अभी क्या मांगे। तो गए तो जरूर नियम के अनुसार, लेकिन मांगने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर पहले वो अभिषेक में, उसके बाद में वाला जो अभिषेक है उसमें सोचा बहुत मन में, क्या मांगे। तो सोचा कि चलो ऐसा मांग लेते हैं कि हमारे कल्याण की क्या चीज है वो आप करो, हमारे हित में क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है वो आप करो। 3 महीने में हम हरे कृष्णा मंदिर में आके हरे कृष्णा महामंत्र जब शुरू किया, तभी एहसास हुआ था मन में कि ये शिव जी ने हमको रास्ता दिखाया। अभी तक तो क्या मांग रहे थे, MBBS के अच्छे मार्क दो, दे दिए, जब असली वस्तु मांगी वो तुरंत दे दी। और तब जो शिव जी के बारे में ज्ञान या अप्रिसिएशन था या कुछ नॉलेज था, उससे कई गुना नॉलेज आज शिव जी के बारे में है, रियल नॉलेज। तभी शिव जी से प्रेम नहीं था, अपने को जो चाहिए वो लेने के लिए गए थे बस, बाकी कुछ मतलब नहीं हमको आपसे। लेकिन आज हम नाम कृष्ण का लेते हैं लेकिन शिव जी के बारे में उतना जानते हैं जितना पहले कभी जानते नहीं थे, और आज जितना प्रेम शिव जी के वजह कारण शिव जी के लिए दिल में है वो तब तो जीरो था बिल्कुल। आज शिव जी के लिए प्रेम है दिल में, तो यही उनकी देन है कि जो उनके इष्ट का भजन करता है वो उनको खुद का प्रेम भी देते हैं और इष्ट के लिए भी मदद करते हैं प्रेम करने के लिए। इसके लिए बहुत नम्रता रखते हैं, बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड, किसी और की हमारे सामने पूजा हो रही है ये यहाँ के लोगों को सहन नहीं, दुनिया के लोगों को सहन नहीं होता है कभी भी, वो भी मुझे छोड़ के। अभी इंद्र को देखा ना आपने, हाँ इंद्र की पूजा छोड़ के उन्होंने गोवर्धन का पूजा किया, तो क्या किया उन्होंने, समुद्र तक बादल को भेज दिया, चला दो सबको, खत्म कर दो, पूरा एक भी बचना नहीं चाहिए, पूरे गांव का गांव नष्ट कर दो, कितना क्रोध आया उनको। एक पूजा हर साल किया पूजा, वो सब बेकार गया, एक साल में कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा हाहाकार मच गया। वो देवता ही है, वो भी देवता है, ये भी देवता है, लेकिन ये जब शिव जी का पूजन आप छोड़ के कृष्ण का भजन करते हो इनको खुशी होती है, यही एक प्योरेस्ट डिवोटी का लक्षण है। कभी भी उसको ईर्ष्या नहीं होती कि इसका क्यों, मेरा क्यों छोड़ दिया, उसका क्यों किया। अरे हमारा तो ऐसा है कि अगर हमारी पत्नी हमको भोजन कराए बिना अगर मंदिर में ठाकुर जी के लिए राजभोग बनाने के लिए ना, तो हमारा दिल तड़पता है, ये भी कोई भक्ति है, पति को पुकार के भगवान की सेवा करने जा रही है, या पति को छोड़कर गुरु जी का भोजन बनाने जा रही है, पति घर में भूखा पड़ा है गुरु जी के लिए पंच पकवान बनाए जा रही है, ऐसा मन में कहीं ना कहीं घंटी बजती है। मुंह से बोलते नहीं क्योंकि हम भी उनके शिष्य है ना, मुंह से शब्द निकलता नहीं लेकिन हृदय में चल रहा है कि पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पत्नी को गुरु का सेवा करना चाहिए, लेकिन पति भी है ना घर पे, उसका क्या ऐसा है। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। हम कहते हैं ना हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और गुरु से भी ईर्ष्या करते हैं और सीनियर वैष्णव से भी ईर्ष्या करते हैं। उनको इतना सम्मान है मुझे क्यों नहीं, इतना लोग उनको प्रणाम करते हैं मुझे क्यों नहीं। यही भगवान के और भक्तों के द्वेष का प्रूफ है। और वो शिवजी में इतना सा भी नहीं है। इसलिए शिवजी वैष्णवानाम यथाशंभु, इसलिए है वो सब वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव क्यों है, वो इसी के लिए है। अहम का बीज भी नहीं है उनके अंदर। तो शिष्यों के बीच में भाग सकते हैं मोहिनी के पीछे, इतने विरक्त हैं वो, उनकी विरक्ति को कोई तुलना नहीं कर सकता है। और वो भगवान के भक्तों को अच्छी तरह पहचानते हैं। जब वो अपनी पत्नी को गोद में लेकर प्रवचन कर रहे हैं ना, तो चित्रकेतु आकाश से आए और हंस पड़े, देखो देखो ये व्यक्ति को प्रवचन दे रहे हैं अपनी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर, मतलब मजाक करते हुए नहीं, अप्रिशिएट करते हुए हंसे। वो कैसे महान भक्त हैं, लेकिन हंसे ना वो, तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने उनको तुरंत छाप दे दिया, राक्षस बन जाओ। तो वो आए नीचे उतर के, वो बड़ा लंबा प्रणाम किया, माता जी आपके मुख का शाप या वरदान दोनों हमारे लिए वरदान है, दोनों हमारे लिए अमृत समान है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो पार्वती जी हैरान हो गई, अरे मैंने तो शाप दिया उसको, तो थैंक यू बोल के चला गया आपकी उम्मीद क्या होती है, मैंने शाप दिया मतलब वो एकदम नाराज होकर चला जाएगा। तो ये थैंक यू बोलने के लिए नीचे उतरे, दंडवत प्रणाम किया, माते बहुत धन्यवाद आपका। तो अब शिवजी बता रहे हैं, अरे पार्वती देवी तुम जानते नहीं हो वैष्णव कैसे होते हैं, स्वर्गेशु नरकेशु अपि तुल्येषु, क्या श्लोक है उसका, इनको स्वर्ग में रखो नरक में रखो कहीं भी रखो, जानवर के शरीर में रखो दैत्य के शरीर में रखो, शाप दो वरदान दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको सब समान है उनके लिए, किसी भी रूप में रखो, हमेशा भगवान के भजन मग्न रहते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं भगवान के भक्तों के, ये शिवजी महाराज। और वहां पर गुणगान कर रहे हैं भक्तों का, पार्वती देवी को समझा रहे हैं, ऐसा है। प्रभु को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, पता है जैसे प्रभु रामचंद्र जंगल में पुकार रहे हैं, हे मेरी मृगनयनी सीते, हे वन्य देवता हूं, हे ग्राम्य देवता हूं, कहीं आपने मुझे मेरी मृगनयनी सीता को देखा है, रो रहे हैं, पेड़ को गले लगा रहे हैं, बेलियों को गले लगा रहे हैं, पक्षियों से बात कर रहे हैं, पागल से हो गए पूरे। शंकर जी महाराज जा रहे हैं पार्वती को लेकर, नासिक क्षेत्र की कथा है, विमान से जा रहे हैं पार्वती को लेकर, पार्वती कह रही ये तुम्हारे भगवान है, ये भगवान है, कैसे रो रहे हैं, एक पत्नी के लिए एक सामान्य जीव की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। तो वो कह रहे देखो देवी ये तो लीला कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कैसे ठाकुर जी आपके, आप कह रहे इनको वंदे वंद कहते हैं पूजनीय कहते हैं, फिर समझाते हैं, फिर पार्वती को समझ में नहीं आता है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, मैं तो परीक्षा लूंगी, जाओ ले लो परीक्षा। तो वो जाके सीता देवी बनकर खड़ी होगी, जो यहां से पूछ के आ रहे हैं तो यहां खड़ी होगी। तो जब वो रोते रोते आ गए, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, माते प्रणाम। तब वो समझ में आया कि अरे तो ठाकुर जी, तब पिता अपने पति की बात समझ में आया कि अरे मैंने कहा था कि ये लीला कर रहे हैं, और मैं तो परीक्षा करने चले गई, दंडवत करके माफी मांग के चली गई वो, तुरंत कहां फंस गए मैं बीच में इधर आके। लेकिन ये नहीं फंसे, ये देख रहे हैं रोते हुए उनको, लेकिन ये नहीं फंसे, बोले ये तो लीला कर रहे हैं। भक्त की पहचान भी अरे बढ़िया से है, भगवान की भक्त पहचान भी बढ़िया से है। तो आप सोचिए जिनको भक्त की पहचान है भगवान की पहचान है, वो मांगने वाले की पहचान नहीं कर सकते क्या, तो मांगने को जा रहे हैं उनकी, हाँ कौन स्वार्थी है कौन अपने लिए आ रहा है अच्छी तरह जानते हैं। भले हजारों की लाइन लगाओ, हाँ भीड़ लगा दो पूरा, बेर के बेर से ही भर दो लिंग को उनकी, लेकिन वो नहीं भूलते उसको, वो सब समझते हैं क्या किसके मन में क्या है। तो इसलिए कभी भी अभी आपको हमको लगता है ना कि हम लोग आके बहुत होशियार है, हम लोग अच्छे पति के लिए पार्वती के पास जाएंगे, बुद्धि के लिए गणेश जी के पास जाएंगे, इधर दुकान इसका खुला है उसके पास जाएंगे, अपने आप को बोले ज्ञान पढ़ा है शास्त्र में, हमको सब पता है किसके पास क्या मांगना है, विद्या के लिए देवी के पास जाना है और अच्छे पति के लिए पार्वती के पास जाना है, शंकर के लिए अच्छी पत्नी के लिए जाना है, हेल्थ के लिए सूर्यदेव के पास जाना है, हमको सब मालूम है। लेकिन जो लोग देने वाले हैं सूर्य जैसे, सूर्य है देवी है, उनको क्या लगता है आपसे कम बुद्धि है क्या, हमसे कम बुद्धि होगी उनको जो देने वाले हैं, आपने जो दे रहे हैं उनका ज्ञान पढ़ के प्राप्त कर लिए, क्या देने वाले वहां जाके मांग रहे हैं आप, लेकिन आपको जितनी बुद्धि पढ़ने में मिल रही है उससे अधिक बुद्धि देने वाले में होगी, इतना तो गारंटी है ना। तो उनको समझ में आता होगा ना कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थी है। हम तो बड़ा बुद्धिमान बनकर जाते हैं उनके पास, लेकिन वो तो पहचानते होंगे ना कि हम कितने स्वार्थी हैं। इसीलिए देवताओं के पास जाने के लिए मना कर दिया है शास्त्र में। देवताओं के पास जाकर ये भौतिक इच्छाओं को प्रकट करना, मन्नत मांगना, नवस क्या व्रत करना उनके लिए और क्या क्या करते रहना, ये इनके लिए शास्त्र में मना कर दिया है। ये नहीं कि भगवान अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी के सामने आना नहीं चाहिए मेरे सामने, ऐसा नहीं है। वो जीव का हित चाहते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी चीज लोग मांगते हैं ना वो समय के साथ में समाप्त तो हो जाता है, और केवल समय के साथ समाप्त तो होने वाले देने की वस्तु देने की ही शक्ति देवताओं के पास में है। अगर आप देवताओं से बोलते हो कि मुझे आप जन्म मृत्यु से मुक्त कर दो तो वो कहेंगे सॉरी, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, हम भी वही एप्लीकेशन लेके खड़े हैं, हमको भी मुक्त करा दो, हमको ये देने वेने का पद चाहिए नहीं, हमको भी मुक्त करा दो, तो हमारा भी जीवन का अंत है, हमारे लिए भी जीवन है और मरण है, जन्म है और मृत्यु है। हाँ, भक्ति जरूर दे सकते हो अगर मांगेंगे तो, लेकिन भक्ति के बाद में अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वो दे सकते नहीं हो, उसमें वो हमारे जैसे ही है, बद्ध जीव है, उनका शरीर अलग है, उनका जीवन काल अलग है, लेकिन तत्व एक ही हमारा, देवताओं को और हमारा तत्व। यहाँ तक कि देवताओं को और मनुष्यों को अगर तुलना की जाए तो मनुष्य को देवताओं के सामने महान माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य में भगवान की प्राप्ति करने की शक्ति अधिक है देवताओं से, उनमें ऐश्वर्य ज्यादा है, इसलिए ज्यादा शक्ति भगवान की प्राप्त करने की नहीं है, ऐश्वर्य छीन लेता है उनको, मनुष्य जो है श्रेष्ठ माना गया है देवताओं में से। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि 400,000 मनुष्य की योनियां हैं, ऐसा बोलते हैं ना, 80,00,000 सब जानवरों की है, जितने भी निचले जीवों की है योनियों की, लेकिन मनुष्य जीव 400,000 आ गया है, तो 400,000 में देवता भी आ जाते, ब्रह्मा भी आ जाते, सब है उसके अंदर, 400,000 योनियां मतलब मनुष्य की देवता तक पहुंच जाती है वो, उन सब में मनुष्य जीव श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन उसका श्रेष्ठत्व का लाभ लेना आपके हाथ में, केवल श्रेष्ठ होने से क्या होता है, तेंदुलकर का बच्चा होने से क्या होता है, खुद बैटिंग करनी पड़ेगी उसको महान बनने के लिए, तेंदुलकर का बच्चा होकर कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा एंट्री मिलेगी कहीं क्लब में, लेकिन महान क्रिकेटर बनने के इंडिया टीम में आने के लिए खुद मेहनत करने के लिए, ऐसे बड़े बड़े गावस्कर का लड़का भी फेल हो गया और मांजरेकर का भी फेल हो गया और तेंदुलकर का भी फेल हो रहा है अभी, ऐसा ही है वो। तो मनुष्य जो आपको वरदान तो मिला हुआ, लेकिन उसका एनकैशमेंट है ना वो आपके हाथ में, और शिवजी महाराज वो भजन आपको दे सकते हैं, और शिवजी महाराज से आपको बड़ी तीव्र प्रेरणा मिल सकती है भगवान के भजन में, भगवान भी इनसे बहुत लालायित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं शिव जी से, यहाँ तक वो स्वयं कहते हैं कि मुझमें और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है, हम लोग दोनों एक ही हैं, केवल एक दूध जैसा है और एक दही जैसा है, केवल गुण अलग है हमारे, लेकिन है हम ही सेम, जैसे दूध और दही समान होता है, क्षीरम दधि विकारम विशेष योगात, हाँ जैसे क्षीर यानी दूध और दही में अंतर है, उतना ही अंतर हमारे में है, नहीं तो हमारा कंटेंट सेम है, आप देखेंगे ना कैल्शियम सब हम लोग सेम है, खाली दूध पीने से दस्त लग सकते हैं और लगे हुए दस्त दही पीने से समाप्त हो सकते हैं, ऐसा गुण अंतर है हमारा, लेकिन हमारा मैं और शिवजी में कोई अंतर नहीं है। और शिवजी का ऐसा है ना कि जैसे यमराज है वैसे शिवजी विशेष क्यों है, क्योंकि वो एक अप्रिय सेवा करते हैं जो कोई करना नहीं चाहता है, वह विनाश करने की सेवा, जैसे नाटक में ना कोई नेगेटिव रोल करना नहीं चाहते, सबको हीरो या हीरो का साथीदार बनना है, या हीरोइन या हीरो इनकी फ्रेंड बनना है, लेकिन विलन नहीं बनना है किसी को, मतलब बहुत बदनामी हो जाती है उसके अंदर। एक बार विलन का रोल करेंगे तो हीरो का रोल नहीं मिल सकता बाद में, वही रोल मिलते रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कई लोग टाल देते हैं रोल को, नहीं चाहिए हमको, वही जब आएगा मौका तब तक वेट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो हीरो का ही करेंगे, तो आगे जाकर हीरो का करियर बनेगा। ऐसे हमारी प्रवृत्ति होती है ना, ये शिवजी ऐसे नहीं है। सबसे घटिया काम जो है ना कोई करना चाहता नहीं, हम करेंगे, सृष्टि का नाश करना है तो हम करेंगे। यमराज कैसे हैं, सब गुनहगारों को पकड़ के दंड देना है, कोई करना नहीं चाहता है। तो यमराज महाभागवत है, वो यम भागवताय नमः बोलते हम यज्ञ में उनको, वो ऐसा काम कर रहे हैं। संघ किसका है, यम दूतों का, वो भी घटिया जीव उनको लगा देते हैं अपना काम करने में। लेकिन अपना जो महाभागवत का होना है वो कई फर्क नहीं पड़ता है, वो महाभागवत ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके संग में आके बिगड़ गए, फिर बाद में पोस्ट खाली करना पड़ा, जाना पड़ा छोड़ के, उसको दूसरा आदमी बिठाना पड़ा, ऐसा नहीं। उनकी महानता बरकरार रहती है। तो शिवजी भी इतना गणों का संग करते हैं, इतना भूतों का संग करते हैं, इतना राख लगाते हैं, हाँ, फिर भी वो शिवजी शिवजी हैं। वो दक्ष राजा थे ना, बड़े परेशान थे, उनको 27 कन्या थी, एक से एक बढ़कर, सब नक्षत्र का नाम दिया उनको, नक्षत्र ही थे सब वो। तो सबको 27 कन्याओं को 27 श्रेष्ठ ऋषियों के साथ विवाह किया गया। एक कन्या थी सती, जो शिव जी के प्रेम में थी, वो तपस्या कर रही थी उनको प्राप्त करने के लिए। दक्ष को बड़ा तकलीफ थी कि सब ऋषि मुनि बड़े बड़े मेरे जमाई बन गए, एक जमाई फकीर है बेचारा, हाँ, जो हमारे बात बैठने के लायक नहीं है, हमेशा भूत प्रेत के बीच में रहता है, हमेशा राख लगाते रहता है, ऐसा जमाई नहीं चाहिए अपने को। बहुत परेशान थे वो, बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी सती ने उनसे विवाह किया। लेकिन उनको उनकी परवाह नहीं है, और इतने ज्ञानी थे वो, जानते थे सती तुम मत जाना, तुम्हारे घर में उत्सव चल रहा है ना, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे मेरे साथ विवाह करने से ऑलरेडी परेशानी घर पे तुम्हारे है, तुमको निमंत्रण नहीं है, तुम मत जाना। सावधान कर रहे हैं, उनको दुख नहीं हो रहा है, लेकिन सावधान कर रहे हैं उसको, तुमको बुरा अनुभव आएगा, देखो। फिर भी जाती है वो, क्योंकि औरत है, अपने पिता के घर में उत्सव चल रहा है, तो नहीं बोला तो क्या हुआ, मैं तो उनकी बेटी तो हूँ, घर की तो हूँ, मैं जाती हूँ, जाते हैं। और अपमान होता है, पिताजी उसका अपमान करता है, क्यों आई तू, तो वो कुछ ना कुछ वहां पर हादसा होगा ये सोचकर ये भी जाते हैं, पीछे से बैठ जाते हैं वहां पर। कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे यज्ञ की आहुति मिलनी चाहिए वगैरह, पत्नी को देख रहे हैं क्या हादसा हो रहा है उनके सामने। उनकी पत्नी अग्नि में अपने आप को जला देती है, क्योंकि अपने पति का अपमान भरी सभा में जो पिता कर रहे हैं वो सहन नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि तुम्हारे से मैंने शरीर प्राप्त किया ना, ये सबसे घिरौनी बात है, मैं शरीर ही त्याग करना चाहती हूँ, तो तुमसे प्राप्त हुआ है। और सीधे एक गुण में प्रवेश करके अपने आप को भस्म कर देती है। फिर जो युद्ध शुरू होता है, बाप रे, ऐसा युद्ध भागवत में वर्णन उसका, ऐसा युद्ध शुरू होता है कि आप एक के बाद शाप के बाद शाप, शाप के बाद शाप, शाप के बाद शाप, इतने भयंकर वैष्णव अपराध है ना, वो ऐसा पूरा वैष्णव अपराध का ही वो गेम था पूरा, ऐसा लीला है वो सब। शिव जी शांत बैठे हुए हैं, डिस्टर्ब नहीं हुए, उनका एक विशेष गुण है वो, कितना भी आतंक मचता हो वो स्थिर और शांत रहते हैं। जब चाहे तब क्रोध भी कर सकते हैं, जब इच्छा होगी तो तीसरा आग खोलेंगे, भस्म कर देंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि सब नॉलेज है उनको, अपने ससुर जी मानने दे रहे हैं, कोई परवाह नहीं उनको, लेकिन पत्नी की रक्षा के लिए चले गए वहां पर, ध्वंस कर दिया पूरा उधर जाके। उसके बाद में तो इनका व्यक्तित्व बहुत अजीब व्यक्तित्व है, एक परम भक्त है भगवान के। आज क्या है उनका मैरिज एनिवर्सरी है, आज उनका विवाह हुआ था, आज जन्मदिन नहीं है उनका, आज उनका विवाह का उत्सव है। सती ने अपना शरीर त्याग किया, फिर वो हिमालय की कन्या करके वापस जन्म लिया उसने, हिमालय की पुत्री के रूप में, शैलजा, हाँ, तो शैलजा के रूप में उन्होंने फिर तपस्या किया, फिर लिंग का पूजन किया और फिर दोबारा उनका विवाह हुआ पार्वती के साथ। कंस भी बड़े, देखो अभी कंस कैसे हैं, कंस ने भी शिव जी का भजन किया था है ना, लेकिन जब पता चला कि हिमालय का गोद में पार्वती का जन्म हुआ है और पार्वती का विवाह महादेव से हुआ है, ये इनको पता चला कि विंध्य पर्वत ने क्या किया कि हमारे भाई हिमालय को पार्वती हुई और विवाह महादेव से हुआ, तो मैं तपस्या करूंगा अभी ऐसी कन्या प्राप्त करने के लिए जिसका होने वाला पति महादेव को परास्त करेगा। समझ में आपको आया कुछ? हिमालय को पार्वती हुई, उसका विवाह महादेव से हुआ, तो विंध्य को लगा मुझे भी किसी को कोई कन्या होनी चाहिए, मैं तपस्या करूंगा ऐसी कन्या प्राप्त करने के लिए जिसका पति महादेव को परास्त करने में सक्षम होगा, मतलब बढ़कर। तो होती है राधा रानी और चंद्रावली। तो फिर कंस क्या बोलते हैं, अभी शिव जी का भजन किया उन्होंने पहले, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, जाओ पुतना ये दोनों कन्या को उठा के लेके आओ, मैं शादी करूंगा उनसे, क्योंकि इस कन्या को वरदान है इसका पति जो होगा वो महादेव को परास्त करने में यशस्वी हो जाएगा। तो अभी शिव जी का भक्ति कर रहे हैं, अभी शिव जी को परास्त करने वाले बनना चाहते हो, ये राक्षस है, इसको राक्षस बोलते हैं। जब चाहे तभी पूजनीय, जब चाहे तभी युद्ध करने को तैयार, स्वार्थ के ऊपर आधारित है राक्षस की व्याख्या, ये है वो केवल स्वार्थ पर जीते हैं, उनको किसी देवता से प्रेम नहीं होता है, क्या मिल रहा है अपने को उससे तपस्या करते रहते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते हैं, स्वार्थ पर ही प्रेम करते खाली। खैर कोई बात नहीं, शिवजी महाराज की चर्चा कर रहे हैं, हमको इतना प्रेरणा लेनी चाहिए कि शिवजी महाराज आपके जीवन की परिपूर्णता को आपको दे सकते हैं, अब उनका भजन करो, पूर्ण ज्ञान के साथ में उनकी शरण में जाओ, उनका आशीर्वाद मांगो, वो आपको कृष्ण को भक्ति करने के लिए पर्याप्त आशीर्वाद दे सकते हैं। बोलो शंकर जी महाराज की, महाशिवरात्रि उत्सव की। ब्रजवासी लोग आज पैदल चल के भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर, कामेश्वर को पैदल चल के कावड़ में जल देते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से कावड़ लेके जल रहे हैं गंगा जी का जल लेकर, 24 घंटे की परिक्रमा होती है ये, कई सैकड़ों किलोमीटर की होती है। और देखो जब गंगा जी का भी आने का निर्णय हुआ तो सब कुछ तो हो गया, गंगा प्रसन्नी भी हो गई, आने का भी हो गया, वो कह रहे आऊंगी, लेकिन देखो मैं आऊंगी ना तो मेरे प्रभाव से, मेरे शक्ति से और मेरे क्या कहते हैं उसको, प्रवाह की गति से पृथ्वी ही बह के जा सकती है। अपने इतना बड़ा पाइप ले समझो और एक फुटबॉल का गेंद रखा, तो फुटबॉल का गेंद आएगा ना बह के, ऐसी पृथ्वी बह जाएगी। तो अभी आप सोचो क्या करना है, आप देखो तुम्हारे पूर्वज पृथ्वी पर पड़े ना, 60,000 लोग राख बनकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, और मैं जिस तरह से आऊंगी, राख तो छोड़ दो पृथ्वी ही जाएगी निकल के, अभी क्या करें? तो कहते हैं आप बताओ आपका वेग रोकने की शक्ति किसके अंदर है, बोले एक ही व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, वो है शिवजी महाराज। दोबारा तपस्या के लिए बैठ गया भगीरथ और शिवजी को प्रसन्न किया और प्रस्ताव रखा, ऐसे ऐसे मेरे पूरा बैकग्राउंड है और आपको भी गंगा जी के वेग को रोकना है, तो गंगा जी को वेग उन्होंने जटा फैला दिया, केवल जटा, जटा क्या चीज होती है, जटा में इतना बल है, जटा में उसको समेट लिया उन्होंने और फिर कंट्रोल्ड फ्लो भेजा उसका, जितना चाहिए उतना ही स्पीड भेज दिया, उतना ट्रांसफॉर्मर में अपना मोबाइल को कितना वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, पावर में कितना वोल्ट है, 240 वोल्ट है, तो वो एडेप्टर क्या करता है 240 वोल्ट को 6 वोल्ट बना के आपको देता है, वैसे ही इन्होंने किया, उसकी इतनी गति को रोक कर जितनी गति चाहिए उतना ही भेज दिया, केवल शिव जी कर सकते थे। तो ये इतनी गंगा जी शिव जी से इतने प्रेम में हो गए कि वो बाहर निकली नहीं, बड़ी लंबी लीला है उसकी। अरे शिव जी का संग कौन नहीं चाहता है बताओ, शिव का अर्थ क्या है, शिव का बताओ, शिव का अर्थ है पवित्रता, शिवम का मतलब पवित्रोत्तम। तो फिर बहुत बड़ी लीला करनी पड़ेगी गणेश जी का और पार्वती को, उसको बाहर निकालने के लिए। फिर जाकर शंकर जी जटाओं को झाड़ा है त्रंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी के ऊपर, और गोदावरी जी निकली हुई। ऐसे महान शिव जी, कई लीलाएं उनकी, कई कई हजारों लीलाएं हैं, लेकिन उनकी भक्ति वाली लीला जो है ना वो अधिक रोचक है। अगर राक्षस को मारा है, ये किया वो किया, वो सब ठीक है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भजन की लीला जो है ना, भगवान के संबंधित लीला जो है, कितना भी निम्न बनने को तैयार है, वो सबसे महान चीज है, समझ। अरे जब समुद्र मंथन हुआ तो किसको पता था कि विष निकलेगा? पहले तो भयंकर विष निकल गया, सब देवता और राक्षस सब भाग गए, कोई खड़ा ही नहीं पाया, क्योंकि हला हल्का होना, मतलब आपको पीना के आगे की बात है, हला हल्का होना भी मृत्यु का कारण बन सकती है। हलाल पैदा हो गया आपके सामने तो उसके बाप से आप मर सकते हैं। सब भाग गए, अभी क्या करेंगे? अभी मंथन का कार्य आधा छूट चुका है, विष पैदा हो गया, क्या करेंगे? अभी जब तक नहीं निकलेगा आगे का कार्य कैसे बढ़ेगा आगे? तो सबने शिव जी का पूजन किया और शिव जी आया, उसको पी लिया, देवताओं का कार्य आगे बढ़ाया। ये तो अमृत कैसे आता? जब शिव जी अगर हलाल को नहीं पीते हैं तो आगे मंथन होता ही कैसे, और 14 रत्न और अमृत आता ही कैसे, और देवताओं का जो प्लान बनाया है भगवान ने रक्षा करने का, वो बनता कैसे? तो भगवान के हित में काम करते हैं, भक्तों के हित में काम करते हैं, और ऐसा भयंकर काम करते हैं जो कोई सोच सकता नहीं करने के लिए, वो ये करते हैं। इतनी शक्ति है कि वो हलाल को गले में रोक लिया उन्होंने, इसलिए के नाम पड़ा नीलकंठ। से अद्भुत काम करने वाले शिव जी। लोग क्या करते हैं? उनके नाम पे भांग पीते हैं। अरे हमारा तो एक ही कहना है कि भांग पीना है तो पी लो, पहले विष भी पी लो ना, जैसे उन्होंने पिया था, और कंठ में रख के दिखा दो, फिर पियो भांग उनके नाम पे। अरे कृष्ण भगवान बोलते रात को बीच में हजारों पराई औरतों के साथ नाच करते हैं, कैसे भगवान है? हमको भी करना चाहिए ऐसे, भगवान करते हैं तो हम कहते एक बार गिरिराज को तो उठा के दिखाओ ना, गिरिराज को उठाओगे तो फिर नाच करो किसी और के साथ, मतलब अगर नकल करनी तो पूरी करो ना, आधी आधी क्यों करते हो? तो शिव जी की उसमें नकल करते हैं, लेकिन ये नकल कौन करेगा? भजन की नकल कौन कर सकता है उनकी? तो ये सब क्या है ना, ये दुनियादारी के लोगों का लक्षण है सब कुछ, उनके नाम पे ऐसे बलदाव जी के नाम पे सब करते रहते हैं। कहां पर ऐसा शास्त्र में लिखा है कि बलदाव जी नशा करते थे? ये सब बेकार की बातें हैं। जहां तक हम पढ़ते हैं तो सब जगह पर उनका भजन का और इसका ही गौरव दिखाई पड़ता है। अज्ञान के कारण लोग है ना बहाना बना के करते रहते हैं, भगवान के नाम पे कोई मछली खाता है, कोई देवी के नाम पे मछली खाता है, कोई मांस खाता है, कोई देवी के नाम से शराब का प्रसाद पीता है, क्या क्या करते हैं लोग, मनगढ़ंत बातें। लेकिन हमारा शास्त्र जो है ना वो प्रमाण है, जो हमको प्राप्त हुआ है भगवान की असीम दया से, हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है भागवत, इसके अंदर परम ज्ञान दिया है, सत्य का, परम सत्य का ज्ञान, सत्यम परम धीमहि, इसका ज्ञान इसमें दिया है। तो आज की महाशिवरात्रि की बहुत बड़ी बधाई है आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जय हो।